کہا سر نیچا کیے کدھر جا رہے ہو؟ میں چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ انسپیکٹر صاحب، آپ نے اسے جانے دیا؟
ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے میں ملوث ہے۔
مگر اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں؟
آپ اندر تشریف لائیں، آئیے۔ پاسپورٹ آفس سے ملی ہوئی معلومات کے مطابق پتہ چلا ہے کہ پچھلے 48 گھنٹوں میں ایسا کوئی شخص ملک سے باہر نہیں گیا، ایسی کوئی رپورٹ نہیں۔
لیکن اس نے وہ قالین تو جرمنی لے جانے تھے۔
میں نے اس حوالے سے تحقیقات کا حکم دے دیا ہے، لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے۔ آپ کے قالین ملک سے باہر نہیں جائیں گے۔
آپ کو اتنا یقین کیسے ہے؟
ایک دھوکہ دینے والا آدمی کبھی بھی کسی کو صحیح حقائق نہیں بتاتا۔ قالین آپ کے ہر جگہ جا سکتے ہیں، لیکن جرمنی نہیں۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے؟
ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ مجرم ابھی ملک سے باہر نہیں گیا۔
سرمت تو فی الحال بھاگ گیا ہے، لیکن ساری غلطی بینک والوں کی ہے جنہوں نے مجھے غلط معلومات دے کر گمراہ کیا۔ دیکھنا، میں سب کی شکایت کروں گا۔
آپ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ کچھ بھی کرنے سے پہلے اپنے اس ملازم کو ہمارے پاس بھیج دیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ اس نے کس سے معلومات لی تھی۔ دیکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے کسی سے معلومات نہ لی ہوں۔ یہ وہی مووی ہے جو ہمیں بینک سے ملی ہے، اس سے کوئی ثبوت ملا؟
اور ہم نے بینک والوں سے پوچھ گچھ کی تھی، اور ہم نے یہ مووی بھی دکھائی تھی ان کو۔ بینک والے کہتے ہیں آپ کے کسی ملازم نے اس سے معلومات نہیں کی۔ ہم نے وہاں کے مینیجر سے بھی معلوم کیا، اس نے بھی ہمیں یہی بات بتائی ہے کہ سرمت کے اکاؤنٹ کے بارے میں ان سے کسی نے کچھ نہیں پوچھا۔
میرے خیال سے وہ بندہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔
تو آپ کے خیال سے وہ کیوں ہم سے جھوٹ بولیں گے؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں، شاید وہ پاگل ہے، سرمت کا ساتھی ہو سکتا ہے۔ میرے خیال سے
اس الزام کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟
کیسا ثبوت؟
وہ ملازم آپ کے پاس کب سے ہے؟
کئی سال سے، جب سے میں نے یہ دکان کھولی ہے وہ میرے پاس ہی کام کر رہے ہیں۔
تو آپ کو اتنے پرانے بندے پر اعتبار نہیں؟
اس نے آج تک کوئی غلطی نہیں کی تھی، لیکن میں پھر بھی اس کو قصوروار کہتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ یہ سب باتیں؟
بہرحال آپ بہت احتیاط سے کام لیں، ہو سکتا ہے وہ کسی کے ساتھ ملا ہوا ہو۔
السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تمہارے ابو کو تمہارا یہاں آنا پسند نہیں ہے؟
ہاں سب پتہ ہے مجھے، آپ یہ بتائیں کہ وہ گئے کہاں ہیں؟
کیا کام ہے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو؟
آج صبح انہوں نے گھر پہ مجھے پیسے نہ دینے کے لیے شور کیا، اور آج میں اسی لیے یہاں آیا ہوں۔ آج میں پیسے لے کے جاؤں گا، ورنہ یہیں بیٹھا رہوں گا۔
میرا خیال ہے وہ بہت دیر سے آئیں گے۔
کوئی بات نہیں، آپ پیسے دے دیں، چابی تو ہوگی نا آپ کے پاس۔
معاف کرنا، تجوری کی چابی وہ کہاں رکھتے ہیں مجھے نہیں پتا، یہ بات تو بس انہیں کو معلوم ہے۔
ٹھیک ہے، جب تک ابو نہیں آتے میں یہیں بیٹھا رہوں گا، اور آج پیسے لے کر ہی جاؤں گا۔
اور کتنا چاہیے تمہیں؟
صبح مجھے صرف 1000 روپے چاہیے تھے جو انہوں نے نہیں دیے، اور اب میں یہاں آیا ہوں تو آنے جانے کا خرچہ بھی لے کر جاؤں گا، یہی کوئی کل ملا کے 5000 ہو گئے۔
5000 چاہیے؟ یہ پیسے میں تمہیں دے تو رہا ہوں، لیکن دھیان رکھنا، یہ پیسے اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر خرچ نہ کر دینا۔ آپ
آج تو آپ بھی ابو کی زبان بول رہے ہیں۔
بابا تمہارے لیے ٹھیک کہتا ہے، تمہارے دوست صبح شام تمہیں الو بنا کر پیسے خرچ کرواتے ہیں۔ انہی دوستوں کی وجہ سے تمہیں کوئی اچھا کام نہیں ملا، جہاں تمہیں کام ملا نکال دیے گئے۔
آپ ذرا سعید صاحب کو دیکھیں، دیکھتے دیکھتے انہوں نے اپنا کاروبار کتنا بڑھا لیا، اور ہمارے ابو کو دیکھیں، ابھی تک ان کے ملازم بنے بیٹھے ہیں۔
تم فوراً نکل جاؤ یہاں سے، زیادہ زبان درازی نہ کرو، اٹھو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔
سعید صاحب آ گئے۔ अस्सलाम वालेकुम।
अरे वाह, साहबजादे भी यहाँ हैं।
अस्सलाम वालेकुम सईद साहब।
वालेकुम अस्सलाम। तुम भी जाओ यहाँ से।
जी अच्छा।
नादिर कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गया?
नहीं गया वो, मैं तो समझा वो आपके साथ गया है।
मेरे साथ? आप सब लोग एक जैसे हैं।
आपको ये सब कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं आपके बाप की जगह हूँ। पहले लोग अपने बुजुर्गों की इज्जत किया करते थे, चाहे वो उनके मुलाजिम ही क्यों ना हो। मेरी बात छोड़ें आप, मैं तो अभी यहाँ नया आया हूँ। कम से कम उस नादिर के बारे में तो ऐसा मत कहें जिसने 30 साल आपकी खिदमत की है।
नादिर क्या? इतने अरसे मैंने उसे अपने पास रखा, अपना समझा, और ये नतीजा दिया उसने मुझे।
उसने क्यों? नादिर ने तो आपको धोखा नहीं दिया, किसी और ने दिया है।
मैंने नादिर पे भरोसा करके कौन सा गुनाह किया था?
अब वो बेईमान हो गया।
हेलो नादिर, किस जहन्नुम में मरे हुए हो तुम, बताओगे मुझे? बकवास बंद करो। तुमने मुझे अकाउंट्स की मालूमात देने के बजाय खंजर घोंपा है मेरी पीठ में। देखो अब सारे हकीकत मंजरे आम पे आ गए हैं, तुम आने की कोशिश मत करना, समझे तुम? यही बताना था तुम्हें।
जी फरमाइए।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं कमाली बात कर रही हूँ यतीम खाने से। आपका काम हो गया है? हमें एक चौकीदार मिला है जिसे कुछ कुछ याद है।
बहुत अच्छे, फिर मैं उनसे कैसे रब्ता कर सकता हूँ?
आप कहें तो मैं उन्हें यतीम खाने में बुला लूँ।
जी जी, मैं 1 घंटे में पहुँचता हूँ, फिर वहाँ आकर आपसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
आपकी तबीयत कैसी है, ठीक है?
ठीक हूँ।
सलाम वालेकुम, आप खैरियत से हैं?
जी हाँ,
इनका नाम आसिया है और ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं। ये इस यतीम खाने में काफ़ी अरसे से मुलाजमत कर रही हैं। आसिया साहिबा, ये उसी लड़की की तस्वीर है जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। आप इसे जानती हैं ना?
हाँ जानती हूँ इसे मैं, जलाल की सौतेली बेटी है।
जलाल?
इस यतीम खाने में वो ड्राइवर था। बीवी के मरने के बाद उसने ये बच्ची किसी और को दे दी थी।
अगर आपके पास जलाल साहब का एड्रेस है तो आप मुझे दे दें।
जब से वो यहाँ से गए हैं मैंने जलाल को कभी नहीं देखा।
ये बहुत गलत हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए मैडम?
चलिए, हमें ये तो पता चल गया कि जलाल इसी यतीम खाने में ड्राइवरी करता था। अगर जलाल साहब जिंदा हैं तो वो हर महीने इसी यतीम खाने से पेंशन लेने आते होंगे। हम पुराने रिकॉर्ड से उनका एड्रेस ढूंढ सकते हैं।
बहुत अच्छे, सफाई हो रही है।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बात है।
लेकिन सही साहब तो ऐसे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब।
मांदू यहाँ क्या कर रहा है?
कुछ नहीं हाजी साहब, बस यूं ही मिलने आया था।
क्या बात है, सईद की दुकान में कोई नहीं है?
मांदू कह रहा था जो लोग कल कालीन खरीद कर लेकर गए थे सईद साहब से, उन्होंने धोखा दे दिया।
धोखा दिया है?
जी हाजी साहब।
वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
आप ठीक हैं?
दाऊदियान साहब कैसे हैं आप?
सईद का क्या हाल है?
क्यों, क्या हुआ?
क्या आपने नहीं सुना?
हाँ, अभी हामिद से कुछ सुना है जनाब।
उसने भी मांधू से सुना होगा। ये लड़का कहता फिर रहा है हर जगह कि एक दुकानदार ने धोखा दिया है आपके सईद को।
इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे हम सब पे। मुझे तो वो नहीं मिला, पता नहीं कहाँ है। मैं नादिर के पास गया, उससे पूछा तो जवाब नहीं दिया। हाजी साहब, आप मेहरबानी करके मेरी मदद करेंगे? अगर ये बात बाजार में आम ना हो तो बेहतर है, मेहरबानी होगी।
ठीक है, मैं ख्याल रखूंगा। पहले आप मानू को समझाएं।
जी मैं समझा।
न जाने क्या क्या कहता फिर रहा है बाजार में।
मैं भी बुलाता हूँ उसको। खुदा हाफिज हाजी साहब। हामिद।
जी हाजी साहब।
देखो तुम मानदू से कहो बाजार में अपनी जबान न चलाए, वरना ठीक नहीं होगा, उसे यहाँ काम नहीं करने दूंगा मैं।
ठीक है हाजी साहब, मैं मानदू को समझा दूंगा।
हेलो,
अस्सलाम वालेकुम, पैमान की क्या खबर है?
वालेकुम सलाम, तुम बताओ सईद की क्या खबर है?
सईद, क्या हुआ सईद को?
कुछ नहीं, परेशान मत होना तुम।
तुम्हारी नौशीन के वालिद से बात हुई?
हाँ, लेकिन फायदा नहीं था। दोनों बाप बेटी पैमान के सामने गाड़ी में बैठ के चले गए।
वो है ही ऐसे। मेरा बेटा कैसा है?
उसके बाद वो मेरे साथ मेरी गाड़ी में था,
रास्ते में गाड़ी रुकवाई और अचानक चला गया। जब से फोन कर रहा हूँ मगर कोई जवाब नहीं दे रहा।
पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम इस हालत में उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था।
मर्जिया, तुम क्यों नहीं समझ रही? वो परेशानी में गाड़ी से अचानक उतरा और चला गया, मैं क्या करता?
शायद अकेला रहना चाह रहा हूँ।
मर्जिया सुनो, अगर सईद तुम्हें फोन करे तो उसको बोलो जरूर मुझसे राब्ता करे।
अच्छा सच बताओ, तुम बार बार सईद का क्यों पूछ रहे हो?
अरे कुछ भी नहीं, बेफिक्र रहो, परेशान ना होना। खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
पजमान, पजमान, दरवाजा खुला हुआ है।
सईद, सईद क्या हुआ?
कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ।
तुम अपने बेटे के लिए परेशान हो
अजमान?
तुम्हें पता है नौशीन उसे छोड़कर चली गई।
जाने दो उसे, लड़कियों की कमी नहीं है।
ये क्या बात हुई सईद? उसकी माँ के मरने के बाद उसका दिल टूट गया, एक सहारा मिला था वो भी छूट गया। तुम्हें पता भी है कि वो कहाँ है और कैसा है? आज सुबह से वो घर भी नहीं आया, पता नहीं कहाँ है।
परेशान मत हो, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, जहाँ भी होगा आ जाएगा, चंद रोज रोएगा और फिर भूल जाएगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ।
इस बार ऐसा नहीं होगा, बहुत परेशान था वो। उस बच्चे को, उसके बाप तुम हो, उसे तुम्हारी जरूरत है, ना कि अब्बास की।
मर्जिया, मैंने बाप का हक अदा नहीं किया। हाजी अब्बास को मदाखलत नहीं करनी चाहिए थी। अब वो मुझसे ज्यादा बाप बनता है तो मैं क्या करूं?
अगर वो अब्बास का बेटा होता तो अब तक वो उसके लिए रिश्ता मांग चुके होते।
मर्जिया, देखो मैं इन हालात में पजमान की मोहब्बत की कहानी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। मैं वैसे ही बर्बाद हो चुका हूँ, जाओ मुझे छोड़ दो अकेला।
सईद, क्या हुआ, क्यों बर्बाद हो गए?
हेलो
अब्बास।
कैसी हो मर्जिया?
तुम्हें पता है सईद के साथ क्या हुआ है?
नहीं, क्या हुआ? मर्जिया तुम बोल क्यों नहीं रही?
हेलो,
ठीक हूँ, ठीक हूँ।
बात करो मर्जिया।
हेलो खानी साहिबा, मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, इसलिए मैं क्लिनिक नहीं आ सकती, तो मरीजों को मना कर देना। ठीक है, खुदा हाफिज।
मामू आप
कैसे हो? तुम क्या हुआ मेहरदाद? तुम मेरी बहन से इतनी देर से बातें कर रहे थे, खैरियत तो है?
कुछ नहीं, वो मुनीरा साहिबा ने काम दिया है।
जनाब मेहरदाद, कहीं इस मौके का फायदा उठा के तुम मेरी बहन से किसी कागज पर साइन या वसीयत नामा नहीं बनवा लेना।
समझ नहीं आता आप ऐसा क्यों सोचते हैं, मैं इन चक्रों में बिल्कुल नहीं पड़ता। उम्मीद है वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगी, अपना ख्याल रखिएगा। खुदाया, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हारे मामू इतने सालों बाद मिलने क्यों आए हैं। रोज रोज अस्पताल आ जाते हैं और हमें परेशान करते हैं।
वो उनकी बहन है, परेशान क्यों ना हो।
अरे वो बहन के लिए परेशान नहीं है, वो जायदाद के लिए परेशान है।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो उनके लिए?
अच्छा माफ करना, मैंने उनके लिए कोई गलत बात की।
और हाँ, तुमने अच्छा नहीं किया जो मुझसे पूछे बगैर अम्मी से मिलने चले गए। तुम्हें पता नहीं उनकी तबीयत कितनी खराब है। वो कैसी फाइल है जो तुम अम्मी को बार बार दिखा रहे थे?
वो इस बारे में बाद में बात करते हैं।
अगर तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो मत बोला करो।
हेलो बेटा कामरान, मैं पजमान का वालिद बात कर रहा हूँ। तुम्हें पजमान का कुछ पता है? नहीं नहीं, क्लब नहीं गया वो, मैं वहीं से अभी आ रहा हूँ। देखो बेटा, पजमान की खबर मिलते ही सबसे पहले मुझे बताना। शुक्रिया, अपना ख्याल रखना बेटा।
डॉक्टर साहब ये ले।
अम्मी जान। अम्मी जान उठिए, खुदा के लिए।
जल्दी से मरीज की फाइल निकालो। जी।
क्या हुआ है?
आपके मरीज की हालत ठीक नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते।
क्यों, क्या हुआ?
वो कोमा में चली गई। कोमा?
कोमा? अब क्या होगा ज़ेबा?
पता नहीं मेहरदाद, पता नहीं मुझे। दुआ करो।
तुम्हारे मामू कहाँ हैं?
मानी आई थी अम्मी से मिलने, उन्हें घर छोड़ने गए हैं। उनके जाते ही अम्मी की तबीयत बिगड़ गई। मेहरदाद, अगर मेरी अम्मी मर गई तो मैं क्या करूंगी?
पजमान बेटा मोबाइल उठाओ।
पजमान बेटा, मैं बहुत परेशान हूं। अपने वाली से बात नहीं करोगे बेटा?
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
طبیعت کیسی ہے ان کی؟
بہتر الحمدللہ، پہلے سے بہت بہتر.
شکر الحمدللہ، میں نے ان کی دوا لے لی ہے.
ٹھیک ہے، ذرا دکھائیے گا مجھے. دوائیاں تو بالکل ٹھیک ہیں.
شکریہ، آپ کو زحمت ہوئی.
جی کوئی بات.
شکریہ. کیسی ہو؟
میں بالکل ٹھیک ہوں، ذرا کمزوری ہے، کام تھوڑا زیادہ کر لیا تھا.
ڈاکٹر نے وٹامنز وغیرہ دیے ہیں.
پجمان کہاں ہے؟
آپ فی الحال چھوڑو ان باتوں کو، سب ٹھیک ہے. ایسی فکروں نے تمہیں بیمار کر دیا ہے.
تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ سعید کو نقصان ہو گیا ہے؟
تمہیں بتاتا تو تمہارا یہی حال ہوتا نا. سعید نے بھی بتا کے غلط کیا ہے. اسے اتنا بھی خیال نہیں کہ تمہیں معمولی سی بات پہ فکر ہونے لگتی ہے. وہ سب کو اپنی طرح ہی سمجھتا ہے، جو کہ اگر کوئی اس کے سامنے مرنے والا بھی ہو تب بھی اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی.
خدا کا شکر ہے ابھی زندہ ہوں، کوئی شکوا نہیں ہے. وہ بھی پریشان ہے، بہت مشکل میں گھرا ہے.
اور یہ ساری پریشانی اسی کی بدولت ہوئی ہے.
کچھ بھی ہے، جیسا بھی ہے، میرا بھائی ہے وہ. ان دونوں کے سوا ہمارا یہاں ہے کون؟
بہت شکریہ. جی ہم تو کسی گنتی میں ہی نہیں، ہم تو آپ کو نظر ہی نہیں آتے.
آپ تو میرے سب کچھ ہیں.
میرا بھی تمہارے سوا ہے کون؟ تمہیں تو اپنے علاوہ سب کی فکر ہے، اپنا خیال ہی نہیں رکھتی. دیکھو ڈاکٹر نے کتنی دوائی، ٹیسٹ اور ایکس ریز دیے ہیں. معمولی سی کمزوری کے لیے اتنی دواؤں کی آخر کیا ضرورت ہے؟
سمجھا نہیں، پجمان تھانے میں؟ جی جی میں، جی میں حاضر ہوتا ہوں. لائیے چابی دیجیے.
یہ آپ کی چابی، گاڑی گیٹ کے باہر کھڑی ہے.
زحمت کی معافی چاہیے.
کوئی بات نہیں.
جی بہت شکریہ.
شکریہ.
چلو بیٹا پجمان.
پجمان اب کہاں جا رہے ہو؟ آ جاؤ بیٹا، کیوں پریشان کر رہے ہو؟
پجمان بیٹا، پجمان اٹھو بیٹا، ناشتہ تیار ہے. اچھا ٹھیک ہے، جب اٹھ جاؤ تو ناشتہ کر لینا.
سعید.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ اس لڑکے کی کوئی خبر ملی؟
جی گھر لے آیا ہوں اسے، ابھی سو رہا ہے وہ.
خدا کا شکر ہے.
आधी रात को जब मैं वापिस आया तो हाजी की गाड़ी नजर नहीं आई। कहीं गए हुए हैं क्या?
कल तुमसे बात करने के बाद मेरी तबीयत बिगड़ गई थी, अब्बास मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे।
तो फिर मुझे क्यों नहीं बताया? शर्मिंदा हूँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए।
ये क्या बात हुई, क्या मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे? तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक कह रही हो तुम, लेकिन मैं अब्बास को क्या जवाब दूं बताओ मुझे।
सईद, तुम थाने जाते वक्त अब्बास को साथ ले जाना।
फिलहाल वो अभी कुछ नहीं कर सकते।
तुम्हें पता है वो सब कुछ कर सकते हैं।
ठीक कहती हो, उनका काम तो सिर्फ मुझे नसीहत ही करना रह गया है। चलो देखते हैं, खुदा हाफिज।
तुम्हें कहा था ना, मुझे उसके ऐब और कमजोरियों का पता चले तो वो उसे अपनी बेइज्जती समझता है।
तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सिर्फ सईद ही पूरी दुनिया में अकेला है जिसने गलती की है।
तुम्हारा मतलब क्या है?
मतलब है कि क्या तुमने कभी कोई गलती नहीं की?
क्यों नहीं, मैंने गलती की है, लेकिन ऐसी गलती नहीं की कि जिससे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाए।
पता नहीं बर्बाद से तुम्हारी क्या मुराद है, मेरी तो सारी जिंदगी ही बर्बाद हो चुकी।
ये कैसी बातें कर रही हो मर्जिया, साफ साफ कह दो ना कि तुमने मेरी जिंदगी की बड़ी गलती को माफ नहीं किया। जहरा की गुमशुदगी मेरी गलती नहीं है।
तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाती हूं।
नहीं करना नाश्ता।
Thank you.
जेबा, जेबा दरवाजा खोलो जेबा। जेबा ऐसे कब तक चलेगा, दरवाजा खोलो। जेबा तुम्हारे मामू का फोन आया था, वो कह रहे हैं सब लोग हॉस्पिटल के बाहर जमा है।
हुआ देवा, देवा
मेरी मां चली गई, अकेली रह गई मैं।
अस्सलाम वालेकुम।
कैसे हो तुम?
बहुत अफसोस हुआ मामा।
मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
अस्सलाम वालेकुम।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
इतनी देर से सारी रात तुम्हारे मोबाइल पे कॉल करता रहा, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया?
मोबाइल नहीं है।
क्यों?
जरूरत नहीं थी, मैंने फेंक दिया था दूर।
तुम्हारे बाबा भी तुम्हें पूरी रात ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान थे।
तो तुम्हें फिक्र है बाबा की?
नहीं, तुम्हारी भी फिक्र है। अच्छा तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर हम दोनों को क्लब जाना है।
अच्छा, मुझे कहीं नहीं जाना।
तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, इसी तरह घर में अकेले बैठे रहोगे तो और परेशान होगे। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा।
नहीं आ सकता, मैं पागल हो रहा हूँ।
मत डरो, तुम पागल नहीं होगे। आमतौर पर जो पागल होते हैं उन्हें खुद खबर नहीं होती कि वो कब पागल हो गए।
हालत तो आज तुम्हारी भी ठीक नहीं लग रही। सुनो कामरान, तुमसे एक सवाल करूं?
खुदा का वास्ता है कामरान, मेरे सवाल का सही जवाब देना। शायद मुझे लगता है
मैं इश्क में बिल्कुल पागल हो गया हूँ कामरान, क्या ये सही बात है? नौशीन।
तुम बताओ, वो तो ऐसी लड़की नहीं थी ना?
देखो पजमान, मुझे नहीं पता, ये तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए। कम से कम इस वाकये के बाद ये जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है इसे सबक सीखो। उस लड़की की खातिर तुम अपने आप को इतनी सजा क्यों दे रहे हो? बहरहाल जो भी हो, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज।
मैंने कई बार कहा, मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन, मैं तुम्हें अच्छे से हॉस्पिटल में लेके चलता हूँ, यहाँ अपने दिल का ऑपरेशन नहीं कराऊंगा। मेरी एक नहीं सुनी, मेरा दिल टूट गया। उसने गैरों की बात तो मानी, लेकिन उसने अपने सगे भाई, खूनी रिश्ते नहीं सुना। आप लोग दुआ पढ़ लीजिए।
मामू जरा एक बात सुनिए।
हाँ बोलो।
आपने कब्र पर ऐसी बात क्यों की?
हाँ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैं अपने दिल से मजबूर था, सो मैंने कह दिया बस।
लेकिन इंसान को अपने दिल की बात दिल ही में रखना चाहिए, हर जगह बोली नहीं जाती।
आखिर कब तक? अब तो मेरी बहन उस दुनिया से फौत होकर भी चली गई और तुम अब भी मुझसे कह रहे हो कि मैं बर्दाश्त करता
हूँ। आराम से मामू।
आखिर मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा था ना बेटा? मैंने कई बार इल्तिजा की और जेबा को भी समझाया कि मेरी बहन को इस अस्पताल से निकालकर किसी अच्छे अस्पताल ले चलो, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। अंजाम देख लिया तुम लोगों ने।
मामू ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आपके दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है। मैं इस हालत में आपसे बहस नहीं करना चाहता, लेकिन खुदा का वास्ता है कि जेबा की खातिर कुछ दिन सब्र कीजिए। किसी को मत बताएं कि जेबा उस मरहुमा की सुतेली बेटी है।
अच्छा, तुम्हारी खातिर या जेबा की खातिर? आखिर कब तक तुम ये बात अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से छुपाओगे? आखिर कब तक? बताओ मुझे कब तक, सोच के बता देना।
क्या बातें कर रहे थे?
देखा ना कब्र पे क्या कहा। पता नहीं हकीकत बताने में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं।
मेहरदाद, मैं कुछ पूछ सकती हूँ तुमसे? आखिर हम कब तक इस तरह जिंदगी गुजारेंगे? मुझे रोज फिक्र होती है कि तुम्हारी फैमिली को यह हकीकत पता न चले। थक चुकी हूँ अब।
जेबा, ये वक्त बहस करने का नहीं है।
कौन सी बहस? जब से तुम रिश्ता मांगने आए थे और मेरे अबू ने तुम्हें हकीकत बताई थी, जब भी तुमने यही कहा था तुम थोड़े दिन रुक जाओ, मैं खुद बता दूंगा। पता है क्या बात है? अबू ठीक कहते थे कि हमें अपनी जिंदगी के आगाज में ही फैमिली से झूठ नहीं बोलना चाहिए।
अगर उन्हें सच बता देते तो तुमसे शादी नहीं करने देते।
क्यों? जुर्म है क्या? अगर कोई फैमिली किसी बच्चे को पालना चाहे तो ये जुर्म है क्या? मेहरदाद, क्या वजह है कि मैं शर्मिंदा हूँ और तुम उनसे हर बात छुपा रहे हो?
जेबा रहने दो, अभी इन बातों को छोड़ो, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब ना हो जाए।
ये मेरे लिए उससे ज्यादा परेशानी की बात है।